सर्वस्य
ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके यहाँ बाजू में एक जगह है, इसका नाम है भानोखर। कितने लोग वहाँ पर गए? जो नहीं गए वो जाओ। वो वृषभानु महाराज का जल महल है। आप गए हैं वहाँ पर? इधर ही है, बहुत पास में। तो वृषभानु महाराज का जल महल है वहाँ पर। कई किसी कल्प में राधा रानी का जन्म भी हुआ है। अलग अलग कल्पों में जन्म स्थान है ना राधा रानी का। तो वहाँ पर विश्वभानु महाराज अपनी पत्नी और परिवार को लेकर बैठते थे ठंडी हवा खाने के। और तो ऐसे बना है कि जो सरोवर है उसके ऊपर ही वो महल आता है। ऐसे इसके नीचे जल है, ऊपर आप बैठकर चारों तरफ से हवा बह सकते। तो वहाँ की लीला ऐसी है कि एक बार राधा रानी अपने सखियों को लेकर वहाँ पर स्नान कर रही थी। तो उसमें से वहाँ से कृष्ण आए। उन्होंने देखा राधा रानी अपने सखियों के साथ जल किला कर रही। तो पहले तो उन्होंने पूछा कि ये छोरी कौन है, जैसे उनको पता ही नहीं, क्योंकि पूछा उन्होंने। तो ललिता ने बहुत जोर से डांट लगाई उनको। आ गए ग्वारी आनंद गांव की, जो पतो ना है कछु, कैसे बोलना है कैसे चलना है। बहुत फटकार लगा के भेज दिया। तो राधा रानी बोलते, अरे उन्होंने पूछा मैं कौन हूँ, तो आप बता देती मैं कौन हूँ, उसमें क्या है, इतना चिल्लाने की ज़रूरत क्या है। ललिता वैसे ही तेज़ है बहुत, वो सब टेढ़े लोगों के टेढ़े काम को जानती है। तो फिर राधा रानी से, राधा रानी ने क्या किया, बोला ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, इतना कड़क बोलने की ज़रूरत क्या है, जब कोई पूछ रहा है तो उसको बोलो, जवाब दे दो, आगे बोलेंगे तो आगे देखेंगे क्या है। ऐसे बोल के वो उनमें से हट गई और बाजू में चली। उतने में कन्हैया जी वहाँ पर खड़े हैं, वो एकदम आराम से सवाल पूछते तो उनको कड़क जवाब आते, तो वो भी एकदम चौंक जाते हैं। फिर वो जल में क्या बोलते हैं उसको आप, हाँ नहीं, वो गोता लगा दे, गोता गोता एकदम अंदर, और अंदर जाकर राधा रानी के पैर को छूते हैं, स्पर्श करते हैं और ऐसे ऊपर आते हैं उनके सामने। राधा रानी को समझे बिना कि पैर को कौन हाथ लगा रहा, उसके समझने के पहले ही वो उनके मुंह के सामने से खड़े हो जाते हैं। तो सब सखियाँ एकदम चौंक जाती हैं और तुरंत ये भाग जाते हैं। कितनी लीला है, और बड़ी लीला नहीं है, सुंदर लीला है लेकिन बहुत। तो ये भानोखर में हुई है लीला। उसके आगे आप जाएंगे 1 किलोमीटर, तो वहाँ पर ब्रजेश्वर महादेव का दर्शन है। आप में से कितने लोग गए ब्रजेश्वर महादेव? हरे कृष्णा। अभी आप एक प्रण करना चाहिए कि अगर हम ब्रजवासी हैं तो हमें कम से कम पास पास की जगह तो पता होना ही चाहिए। दूर दूर की बात तो अभी आधी बद्री देखा है कि आधी किधर देखा है, कहते हैं हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे कुछ पता नहीं है ना। तो दक्षिण दिशा में दाऊ जी महाराज हैं, यहाँ से 90 किलोमीटर है। अभी कोई बोलेंगे राधा रानी गए हो क्या मानसरोवर, तो बोलेंगे पता नहीं किधर है। अभी वहाँ के लोगों को पूछेंगे डबरा डबारो गए हो क्या, डबारो कहाँ होता है पतो ना है ऐसा है। तो मैं जब अभी ब्रज में रह रहा हूँ तो मुझे इतना आनंद आ रहा है क्योंकि मैं कल मेरी पत्नी के साथ जा रहा था, तो मैंने कहा कि देखो जिस दिशा में देखो वहाँ पर पवित्र स्थान है, कहीं भी देखो, आगे देखो, साइड में देखो, पीछे देखो, राइट में देखो, लेफ्ट में देखो। तो हम जा रहे थे, लेफ्ट में जमुना जी थी, राइट में इमली तला था, थोड़ा आगे राइट में श्रृंगार भट्ट आया, उसके बाद में राधा दामोदर आया, उसके बाद में श्याम सुंदर आया, उसके बाद राधा रमन आया, जमुना जी वैसे ही रही, पल्ली पार उधर मानसरोवर है, किधर भी देखो सब जगह पवित्र स्थान है। हम सब लोग घिरे हुए हैं पवित्र स्थानों से, जैसे ये वस्त्र मुझे लिपट के बैठा है ना, वैसे धाम आपको सबको लिपट के बैठा है वस्त्र की तरह, सब जगह से कवर करके रखा है। इतनी भाग्य की बात है। तो बृजेश्वर महादेव वहाँ यहाँ से कुछ 200-300 मीटर तो भानुखर है, हाँ, जल महल, और उसके आगे 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होकर शायद चल के भी जा सकते, 10 मिनट में जा सकते हैं, जंगल में है वो, और उस वन का नाम है रावल वन। वैसे कोई ऐसा जंगल नहीं है, पवित्र स्थान है रावल वन, वहाँ पर बृजेश्वर महादेव है। अब बृजेश्वर महादेव वो महादेव हैं जो वृषभानु बाबा ने संतान प्राप्त करने के लिए वहाँ तपस्या किया है, बृजेश्वर महादेव के पास उधर लिखा है बृजभानु महाराज की तपस्थली बृजेश्वर महादेव, और इनकी कृपा से राधा रानी की प्राप्ति हुई है उनको। तो वो लक्ष्मी मैया बता रही थी आज कि अभी अभी 25 साल पहले की बात है, बृजेश्वर महादेव लुप्त तो हुए थे, वो नहीं थे, तो किसी खेत, जिसका खेत था वो हमेशा वहाँ हल चलाता था, तो हल के बीच में कुछ खटक, क्या कहते हैं उसको, कुछ खटकता था उसमें, कुछ ऐसे अवरोध ऐसे आ रहा है बीच में, तो उसको लगा होगा क्या पत्थर वत्थर, होता है ना कभी बीच में पहाड़ होता है, कभी होता है। तो उसके स्वप्न में बृजेश्वर महादेव आए, बोले आपके खेत में मैं हूँ, मुझे निकाल के स्थापन करो। तो उसने खोदा उसको प्रेम से, तो महादेव जी प्रकट हो गए। वो शिवलिंग इतना सुंदर है कि अगर वो मैया नहीं बताती तो हम लोग दंडवत करके चले आते हैं, लेकिन शिवलिंग के अंदर शंकर जी का पूरे श्रृंगार के साथ दर्शन है, पार्वती जी का उनके बाजू में दर्शन है, और गोद में गणेश जी भी हैं, और सर से गंगा जी भी निकल रही है। उन्होंने दिखाया, वो लाइट वाइट लगा के झुक के हम लोग अंदर चले गए और देखा, अरे सुंदर दर्शन, ऐसा अद्भुत है। तो वो हमारे समझ में ऐसा आया था, पहले बताया था उन्होंने कि वो भी खेत में है ना, वो खेत में, तो उनको लगा कि इनको निकाल कर कहीं और अच्छी जगह रखा जाए, तो खोदने लगे, खोदने लगे तो पारी नहीं लगी उसकी इतनी जमीन में। तो बोले, दोबारा स्वप्न में आए, बोले कि मुझे यही रखना है, यही मेरा स्थान है। मतलब वो आज जो दिख रहा है आपको, वो भी ऐसे जमीन के नीचे के तल पे है। आपको दो 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 क्या कहते हैं उसको, सीढ़ी बोलते हैं ना उसको, हाँ, स्टेप, दो स्टेप नीचे उतरना पड़ता है, फिर वहाँ पर जरा सा दर्शन है। तो उनको लगा खेत के बीच में है, तो फिर उसको कहीं और अच्छी तरह से बनाया जाए, उसको निकाल नहीं पाए वहाँ से। जैसे वो राधा रानी का मंदिर था, वो जीर्ण हो गया था 500 साल पहले, तो सवाई माधो सिंह को लगा कि अरे जीर्ण हो गया है, नया मंदिर बनाएंगे उसको, और नया मंदिर बनाया भी उन्होंने, कई साल तक बनाया उसको, कई टनों हजारों टन पत्थर लगाया उसके ऊपर। और जब प्रतिष्ठापना करने का समय आया तो राधा रानी को यहाँ से वहाँ लाना था, इस गढ़ से उस गढ़ पे, तो राधा रानी स्वप्न में आके बोली कि मैं नहीं आ सकती वहाँ पर, ये तो मेरे पिताजी का घर है, निज स्थान है मेरा, यही मेरा घर है, आप मुझे यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते, मैं वहीं रहूँगी। वैसे ही हुआ ना, वो धाम अपने अपने जगह पर उस लीला स्थली फिक्स है, आप उसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते। बृजेश्वर महादेव यहाँ बैठे, और रावल बन जो है वो राधा रानी का लीला स्थली है, वहाँ पर राधा रानी, गोपियाँ और कन्हैया जी मिलकर रास रचाते हैं, रासलीला का स्थान है वो। आज केवल खेत है वो, चाहे खेत हो, चाहे रास्ता हो, चाहे कुछ भी हो, ठाकुर जी का लीला से तो लीला स्थली होते ही, इतना पवित्र स्थान है वो। वहाँ पर गए हम लोग तो इतना ऐसे अचानक पहुँचे वहाँ पर, कुछ हमारा प्लान नहीं था आज आपको जाना है वहाँ पर, ठाकुर जी की ऐसी लीला रही कि उन्होंने हमको दर्शन कराया। इतना सुंदर स्थान है। फिर हमने वहाँ पर एक गुलेर का पेड़ देखा। हमने गुलेर का पेड़ देखा होगा ना, गुलर, उसको शास्त्र की भाषा में औदुम्बर कहते हैं। औदुम्बर यानी दत्तात्रेय, दत्तात्रेय यानी अत्रि और अनसुया के पुत्र। आपको कहानी पता है उसकी? किसको पता है? पता है आपको? वो ऐसा हुआ कि देवताओं के राज्य में चर्चा चली कि सबसे बड़ी सती कौन है। तो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो उनको लगा हमारे सेवा कौन हो सकता है। तो वो चर्चा चली, तो उन्होंने कहा कि ये देवता लोक में कोई सती इतनी महान नहीं है जितनी पृथ्वी पर एक है। तो देवताओं की स्त्रियों को जरा सा लगा, अरे हम इतनी श्रेष्ठ स्त्रियां हैं और हम सती नहीं है, वो पृथ्वी पर कोई मानव सती है, कौन है वो? तो उन्होंने कहा कि अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया जी जो है वो सबसे महान सती है, पतिव्रता में सबसे श्रेष्ठ है। तो इनको इतना अच्छा नहीं लगा, समझो आपको आपकी पत्नी को बोले कि आपसे खूबसूरत दूसरी वाली है, मेरे भाई की पत्नी आपसे खूबसूरत है, तो लगा अरे थोड़ा तो ईर्ष्या होगी ना मन में। ऑफकोर्स ये तो ये ईर्ष्या तो वैसे ईर्ष्या नहीं जैसे हमारे जैसी होती, वैसे तो भगवान की लीला में सम्मिलित है। तो वो तीनों कहती हैं, जो ब्रह्माणी विष्णु की और पार्वती जी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी, कि नहीं नहीं हमको भी परीक्षा करनी है, मतलब हमको देखना है कि वो कैसी है, हमारे से श्रेष्ठ कैसी है। तो उन्होंने कहा जाओ आप उसकी परीक्षा करो। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश निकले और पृथ्वी पर आए और ऋषि बनकर इनके घर पे गए। किसके? अत्रि मुनि के। तो अत्रि मुनि के घर पे गए तो वो पत्नी पति की सेवा में थी, तो उन्होंने कहा भवती भिक्षान देई, दरवाजे पे साधु खड़े हैं भिक्षा मांग रहे। तो वो आती है और वो भोजन वगैरह लेके आती है, तो बोला करो भोजन। हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी, आपको सारे वस्त्र निकाल के हमको भोजन कराना पड़ेगा। तो समझ गई कि दाल में कुछ काला है। बोले कोई बात नहीं, आप रुको मैं आती हूँ। अंदर गई और अपने पत्नी का कमंडल लेके आई। अभी आपको पता है साधु जो होते ना वो रोज एक जल पात्र बनाते हैं, नया फ्रेश पात्र ही होता है लेकिन नया जल बनाते हैं, उसके अंदर जल डालते हैं और मुद्रा बनाते हैं, ऐसी मुद्रा बनाते हैं और ये उंगली के मांसल भाग से जल को स्पर्श करके मंत्र उच्चारण करते हैं, सभी नदियाँ उसमें आह्वान करते हैं और उस जल को अभिमंत्रित करते हैं और उससे सारी आगे की क्रिया रोज की जो पूजा अर्चा करनी है उससे करते हैं। और बाद में वो जल जो है ना वो बहुत पावरफुल हो जाता है, वो उसके अंदर अनेक परिणाम हो सकते हैं। तो उसको तो पति पर श्रद्धा थी और पतिव्रता थी बड़ी वो, तो पति का सुबह का पूजा किया हुआ जो जल है कमंडल का वो ले आती है, वो लेके तीनों पर छिड़कती है, तो तीनों बालक बन जाते हैं, नंगे बालक, खेलने वाले रेंगने वाले बालक बन जाते हैं। फिर वो उनको बिठाती है और खुद भी निर्वस्त्र हो जाती है। अभी देखो बालकों के सामने तो कोई संकोच नहीं होता है, निर्वस्त्रों को उनको भोजन कराती है। तो उसका पतिव्रत्य भी टिक गया और है ना, ऐसा कोई सोच सकता है क्या? बोला अभी क्या करेगी औरत है, अभी वस्त्र उतारेगी तो वस्त्र पतिव्रत भंग हो जाएगा, अभी तो हार जाएगी है ना। लेकिन पतिव्रता तो पतिव्रता होती है, इनको बालक बनाया और खिलाया भोजन। ये लोग इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए उस मैया से कि वहीं रह गए, वो उसी के घर में बालक बन के वहीं पर खेलने लगे, रहने लगे, एकदम बड़े प्रेम से आसक्त। इन्होंने भी मैया का प्रेम दिया उनको। अब बहुत दिन हो गए, ऊपर की मैयाएं वेट कर रही हैं कि रिजल्ट क्या हुआ, परीक्षा लिया उसका रिजल्ट क्या निकला। तो आए नहीं पति रिजल्ट बताने के लिए, तो ये लोग नीचे आ गए और उनके पता था कहाँ गए परीक्षा लेने के लिए। तो आके बोलते हैं हमारे पति कहाँ हैं, बोलते वो देव खेल रहे हैं तो वो देख रहे हैं नंगे बनकर खेल रहे हैं उधर, तो नहीं वापस करो हमको। तो दोबारा उस दिन का जल जो है वो ले आती कर्मंडल का और छिड़कती है उनके ऊपर, तो फिर ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो जाते हैं महेश जी। तो कहते हैं कि हम आपसे बहुत आसक्त हो गए और आपका वास्तविक पुत्र बनना चाहते हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तथास्तु, आप मेरे पुत्र बन सकते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश एकत्र हो गए और वो दत्तात्रेय बने, और दत्तात्रेय के रूप में अनसुया के गर्भ से जन्म लिया उन्होंने। और फिर ब्रह्मा जी का मुझे पता नहीं है, लेकिन शिव जी का एक अंश जन्म लिया उनकी गोद से, क्या नाम उसका, दुर्वासा मणि, वो भी उनके ही पुत्र हैं। शिव जी अलग लिया, ब्रह्मा जी ने अलग लिया जन्म, मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी, मेरे ख्याल से भृगु मुनि हो गया, मेरे को पक्का पता नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी से भी एक पुत्र हुए, तीनों से मिलकर भी एक पुत्र हुए, मानो विष्णु से हुए और शंकर जी से दुर्वासा मुनि हुए और उनके पुत्र के रूप में रहे। लेकिन जब वो जाने लगे तो अनसुया जी ने उनको श्राप दिया कि तुमने प्रेम तो किया, मैंने भी किया आपके ऊपर, लेकिन आप तो आए थे मेरी परीक्षा करने के लिए ना, आपने सती की परीक्षा की, आप लोग पत्थर बन जाओ। तीनों को पत्थर बनने का श्राप दिया, फिर वो तीनों यहाँ पर पत्थर बने हैं ब्रज में, ब्रह्मा जी ब्रह्माचल के रूप में, शिव जी नंदीश्वर के रूप में और विष्णु जी गिरिराज गोवर्धन के रूप में। और पुराण यह भी बताता है कि इन तीनों शापित देवताओं को, मतलब त्रिदेवों को, पत्थर बनना था ना, तो पत्थर बनने के लिए पत्थर बने तो प्रभु रामचंद्र ने अपने हाथों से उनको स्थापित किया ब्रज में, ऐसे भी पुराण में वर्णन आता है। तो ये दत्तात्रेय जो है, जैसे शिव जी किस पेड़ में रहते हैं बताओ, हाँ हाँ, बरगद का पेड़ शिव जी है, पीपल का पेड़ कृष्ण है, अश्वत्थ, हम भगवान गीता में बताते हैं कि सारे पेड़ों में अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़ मैं हूँ, और शिव जी बरगद हैं और दत्तात्रेय औदुम्बर है, समझ में आपका है? तो औदुम्बर का ऐसा गुण है, जहाँ पर भी औदुम्बर होता है उसके बहुत छोटे छोटे फल होते हैं, हाँ गुलेर के, वही औदुम्बर गुलेर, वो जहाँ पर भी होता है उसके नीचे बहुत जल का संचय होता है। आप कुआं खोदो या कुछ, आपको जल मिलेगा, बोर मारो आपको बहुत पानी मिलेगा, और कभी भी आप गर्मी में उसके नीचे चले जाओ एयर कंडीशन मिलेगा आपको, ठंडक मिलेगी, कभी देखो आप अनुभव करो उसको। और गुलेर का पेड़ जो है ना, वो जैसे यहाँ पर पीलू के पेड़ रहते हैं, जैसे यहाँ पर कदम का पेड़ है, उतने सब जगह दिखाई नहीं पड़ते, वो कुछ कुछ अभी देखो, आज मैंने इस ट्रिप में पहली बार देखा गुलेर, आज बहुत कम होते वो गुलेर के पेड़, हाँ बहुत पवित्र, एक ब्रिज के जो 10 पेड़ हैं उसमें से बहुत पवित्र पेड़ गुलेर का है। रामायण में उसका उल्लेख आता है कि रावण को राम कहते हैं कि जिस तरह से गुलेर के फल के अंदर अनंत जंतु होते हैं, कीड़े होते हैं, और वो फल को नष्ट कर देते हैं, वैसे मैं तुम्हारे राक्षस कुल को पूरा नष्ट कर दूंगा, अंदर से नष्ट कर दूंगा पूरा मैं। इसलिए गुलेर का फल जो है ना, वो मरने वाले व्यक्ति को खिलाते नहीं, पीपल का फल खिलाते हैं उसको लास्ट में, लेके आते तुलसी और वो लेके आते उसके पास में रखते, तो गुलेर का फल खाया तो नरक में जाता है अर्जुन, बाकी समय खाते लेकिन वो कच्चा नहीं खाते उसको भी, उसको कच्चा खाएंगे तो अंदर बहुत कीड़े होते हैं उसके, क्योंकि खोल के देखेंगे ना अनंत कीड़े मिलेंगे उसका, वो होता ना अंजीर वैसे दिखता है वो फल, उसकी खुशबू होती है बहुत।
अपने सामने है गुलेर का पेड़,
हाँ दर्शन करो, दत्तात्रेय जी का निवास है उसके अंदर, दत्तात्रेय जी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है भगवान का, तो ऐसा ब्रज है, हाँ या कृपा ही कृपा है। ये ब्रज का ऐसा महात्म्य है कि देखो अभी क्या हुआ, परसों 2-3 दिन, एक हफ्ते पहले, कितने 4 दिन हो गए होंगे, वो ब्रज हमारा ना एक इस्कॉन का मंदिर नया बना नोएडा में, हाँ बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर बना, हो सकता है मैं इतवार को दर्शन करूँ। तो उसके प्रेसिडेंट हैं ब्रज भक्ति विलास उनका नाम, बड़े 52-53 साल की उम्र थी, लेकिन लीवर खराब हो गया उनका एकदम, बहुत अति बीमार हो गए वो, और उस दिन रात को इतने बीमार हो गए थे, 5 बजे फोन आया कि हम उनको लेकर ब्रज में आ रहे हैं, वृंदावन हॉस्पिस में आ रहे हैं। तो वो बेचारे निकले वहाँ से मतलब बेहोश अवस्था में, डॉक्टर भी थी वो, वेंटिलेटर भी लगाया था उसको और ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उसको, लेकिन वो तो एकदम भयंकर अवस्था में थे। जैसे ही कोशी में प्रवेश किया उन्होंने, 2 लंबी सांस लिया और शरीर छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी एक आशा होती है ना, कभी पता नहीं, मशीन तो चल रही है, मशीन तो सांस ले ही रही है, लेकिन मशीन का सांस ले रही है खुद के सांस ले रही है क्या मालूम। तो वृंदावन हॉस्पिस में लेके आए, मैं वहाँ पर था, हमने आते ही उनको चेकअप किया तो वो नहीं रहे, चले गए थे। मैंने पूछा हिस्ट्री, कब लास्ट सांस लिया, तो उन्होंने कहा कि कोशी के बाद में लिया उन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा हो गया, ब्रज में आए और शरीर छोड़ दिया। बहुत लोगों का ऐसा होता है, दूर से आते हैं ब्रज में, आते ही ब्रज का वेट करते हैं ना, तो आत्मा भी चाहती है कि ब्रज में शरीर छोड़े। तो वो शरीर छोड़ दिया, तो हम डिक्लेयर कर दिया मैंने कि शरीर छोड़ दिया। तो फिर बहुत लोग आए, वृंदावन मंदिर से आए, वहाँ से भी बहुत सारे आए थे, गाड़ी से आए थे। तो एक माहौल बन गया हॉस्पिस में, सब कीर्तन शुरू हो गया और बहुत लोग जमा हो गए, इधर से आने लगे वगैरह, बहुत टाइम गया। और एक समय पे उनको हमने वहाँ से विदा किया, उनको क्रियाकर्म करने के लिए। तो हमारे हॉस्पिस के सामने एक परिवार, बहुत सारे भक्त रहते हैं उधर फ्लैट में, तो एक परिवार के एक बुजुर्ग भक्त हैं, वो वहाँ पर कई साल से रह रहे हैं, वो भी गए अंत संस्कार में। सब संस्कार हो गया जमुना किनारे, उधर देवरा बाबा का हुआ है ना ऑपोजिट साइड में, तो ये साइड में सब जब लोगों का क्रियाकर्म होता है वहाँ पर, क्रियाकर्म सब भक्तों का करते हैं, वहाँ पर हो गया। जब लौट रहे थे तो वो जो भक्त है जो सामने वाले घर पे रहते हैं हमारे, वो एकदम अचानक अपने बेटे के गोद में हार्ट अटैक आके गिरे, उधर ही ख़त्म हो। तो उनको लेकर हॉस्पिस में आ गया वापस दोपहर को 2 बजे 2-3 बजे। और फिर उनके लोग आने लगे सब दिल्ली के, इधर के उधर के, जहाँ उसका वो पुत्र इतना, मतलब दुख तो था उसको पिताजी का जाने का, लेकिन वो इतना खुश था कि क्या मेरे पिताजी का भाग्य है, देखो कुछ कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं, कुछ नहीं। जमुना जी के किनारे अगर कोई मुर्दा भी बाहर मरा हुआ वहाँ पर आता है, वो वहाँ उसका क्रिया होता है, क्रिया संस्कार, तो भी वो गोलोक पहुँच जाता है। कई प्रकार के ब्रज के कनेक्टेड चीज़ें हैं, या तो ब्रज में उसकी मृत्यु हो जाए तो भगवत धाम, या ब्रज के बाहर मृत्यु हो जाए और ब्रज में संस्कार हो जाए तो भी भगवत धाम। तो उसी किनारे पे उसने 2 मिनट के अंदर शरीर छोड़ दिया, वो भी अपने बेटे के गोद में गिरा और बेटे ने उसी उस समय पर ध्यान रखते हुए ब्रज रस निकाल के मुंह में डाल दिया और बेटा बोलता है कि राधे बोल के उन शरीर छोड़ दिया। फिर उनका सब हो गया, फिर उनके कई लोग आने वाले थे तो रात भर वो उधर रहे, लड़का वहाँ जप करते रहा जोर जोर से, और सुबह फिर उनको लेके गए। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, तो मैं मेरे गुरु भाई को बता रहा था कि किस समय ब्रज में क्या होगा कोई बोल नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि केवल बुरा होगा, और किस समय क्या अच्छा होगा ये भी आपको पता नहीं है यहाँ पर। जैसे मैं किसी काम से वो लक्ष्मी मैया को मिलने गया था और ब्रजेश्वर महादेव के दर्शन हो गए, कोई प्लान नहीं था। हम लोग खाली ना बुरा हुआ तो पूछते ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब अच्छा हुआ तो पूछते नहीं ऐसा अच्छा क्यों हुआ है ना। हाँ वो थोड़ा सा करो उसको ठीक करो, तो आप लोग आगे आ जाओ मेरे पास, क्या बात है, आ जाओ कम। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ना हमारे बचपन में एक टेनिस प्लेयर था, टेनिस प्लेयर, हाँ उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, तो वो बहुत साल चैंपियन रहा वर्ल्ड में, टेनिस में चैंपियन रहा वो, और फिर दूसरा चैंपियन बन गया ना लास्ट में, कि वो हार गया तो दूसरा बन गया, तो कुछ साल के बाद रिटायर हो गया, वो बुजुर्ग हो गया और बुढ़ा हो गया, 70 साल का हो गया, तो उसको कैंसर हो गया। तो उसका टीवी पर मुलाकात चल रहा था, क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यू, क्या बोलते हैं उसको टीवी पर, नहीं मुलाकात, वो इंटरव्यू, उसको पूछा गया कि आपको ऐसा लगा नहीं कि मुझे क्यों ऐसा होना चाहिए, तो उसने ऐसा जवाब दिया, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दिया, ध्यान से सुनो। उन्हें कहा कि मेरे जीवन में मैं यश के शिखर पे था इतने साल, तब मैंने कभी पूछा नहीं कि मैं क्यों, मुझे क्यों मिल रहा है अकेले को, इतने लोग टेनिस खेलते दुनिया में, इतने टेनिस खेलने वाले एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन खिताब मैंने इतने साल जीता, तब मैंने पूछा नहीं मुझे ही क्यों। तो आज कैंसर हुआ तो मैं क्यों पूछूं मुझे क्यों, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सोच है कि जब सुख आता तो हम पूछते नहीं मुझे क्यों। कोई सुंदर पत्नी से विवाह हो गया आपका तो आप पूछते नहीं अरे मुझे क्यों सुंदर पत्नी मिली, उसको क्यों नहीं मिल रही, दुनिया को सबको क्यों नहीं मिल रही। लेकिन कैंसर हो गया आपको तो बोलेंगे मुझे क्यों कैंसर हो रहा है, इतने लोग पापी दुनिया में उनको नहीं हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है, दाऊद इब्राहिम को कैंसर क्यों नहीं हो रहा है मुझे क्यों हो रहा है, मैं तो जप करता हूँ भगवान के नाम का, ये हमारी मनोवृत्ति है। लेकिन ब्रज में जब दुख होता है तो हम बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब अच्छी चीज़ें होती हैं, अभी मैं ऐसे ही गया था घूमते को तो मैया बोली घर पे आओ, जो राधा रानी की सेवा करते हैं उनके परिवार, राधा रानी को जो उड़ा उड़ते हैं ना पीछे उड़ते ना चुनरी, मुझे उड़ाई नहीं सुगंधित। एक बार एक तांत्रिक को मैंने राधा रानी का वस्त्र दिखाया था तो बोलता है इसमें बहुत शक्ति है, ये अपने हमेशा गोद सराय सिराने रखना रात को, इसमें से बहुत एनर्जी मिलेगी आपको। वो तो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, है ना, हम तो कृपा बोलते हैं, वो तो एनर्जी बोलेगा क्योंकि उसका विषय अलग है। तो कृपा भी ऐसी ब्रज में होती है बिना पता होते हुए, संकट भी ऐसे आते हैं। अभी देखो ग्वाल बाल बेचारे खेलने को जा रहे हैं, उन्हें क्या पता आज अरिष्टसुर आने वाला है, वो तो आनंद से मजे से गीत गाते हुए सज धज के जा रहे हैं, भोजन लेके जा रहे हैं और नाच रहे हैं कूद रहे हैं, कभी पेड़ की शाखा से चढ़ रहे हैं, कभी पंछी का आवाज़ कर रहे हैं, कभी मेंढक बन के जमुना जी में कूद रहे हैं, कभी कुछ किसी का मजाक कर रहे हैं। अचानक गर्जना होती है, तूफान सा आ जाता है उसकी सांसों से, हाँ पैरों से भूकंप सा होता है, अब भय भयन का आतंक पैदा होता है, सब डर जाते हैं, हे कृष्ण कृष्ण बलराम जी बचाओ, फिर कृष्ण उसको मार देते हैं, ये सब खुशी खुशी हो जाती है, दुख हो गया भयंकर बहुत एकदम खुशी हो, जमुना जी में स्नान करते हैं फिर भोजन करने बैठते हैं, हे ब्रह्मा जी आते हैं सब कुछ चोरा के ले जाते हैं। तो ब्रज में भी जब कृष्ण भगवान थे तब की बात कर रहा हूँ, तभी भी कभी भी कोई चीज़ प्लान के मुताबिक होती नहीं थी, बीच में कुछ हो जाता था और उसकी भी स्टोरी बनती थी, अरे ऐसा हुआ आज मैया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम वहाँ जा रहे थे ऐसा हुआ तो वो आया फिर हमने मारा उसको, फिर वाला बोलते इन्होंने मारा इसको, ऐसा उठा के पटक दिया, अरे बड़ा कन्हैया जी कितना वीर है बड़ा। लेकिन क्या होगा इसका कुछ भरोसा नहीं है, अच्छा भी ऐसा होगा तो भरोसा नहीं कि आज क्या अच्छा होगा, ये ब्रज का जीवन है और उसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि अच्छा हमको लग रहा है वो भी कृपा है और जो बुरा हमको लग रहा है वो भी कृपा है। राक्षस आया आतंक मचा सबको, एकदम भयंकर आतंक मचा दिया, इतना डर लगा सबको, लेकिन बाद में कन्हैया ने उसको मार दिया और आपके संकट को दूर कर दिया, आनंद दिया सबको, है ना, कथा बन गई, लीला हो गई उसकी। तो बुरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, जो भी है सब कुछ ठाकुर जी की इच्छा से। कभी कभी ना डॉक्टर बच्चे को इंजेक्शन लगाता है, मालूम है ना आपको, आपके बच्चे को लगाया होगा डॉक्टर ने कभी, इतना बच्चा रोता है कभी कभी दो आदमी को लेके जाना पड़ता है बच्चे को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसको सुई लगाना है, उसको डॉक्टर बोला सुई लगाना है उसको। बच्चा सोचता होगा ये क्या माता पिता है कि राक्षस है, सब लोग माता पिता बोलते तो है लेकिन राक्षस है, देखो कैसा पकड़ते मुझे क्रूर बनकर, ऐसा हाथ तो हाथ पैर तो कोई दुश्मन भी नहीं पकड़ सकता है, ऐसा पकड़ते ऊपर सुई लगाते इतना दर्द हो रहा है मुझे, कैसे माता पिता ये। लेकिन जब बड़ा होता है तो उनको समझ में आता है कि उनकी कृपा थी मुझ पर, मैं जूझ रहा था, मैं संघर्ष कर रहा था, इसलिए वो दो आदमी आके पकड़ना पड़ा, लेकिन कृपा जो करनी थी वो तो हुई। और आज आगे आप बोलेंगे पूरन जी आपको तो बुखार आ रहा है सो एक सुई लगानी पड़ेगी, तो आप बोलेंगे ठीक है लगा दो, हो सकता है एक हाथ में मोबाइल लेके बात कर करेंगे यहाँ पर सुई लगेगी, है ना, तभी आपको दो आदमी लगाने की जरूरत है क्या पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है क्या हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तभी पता नहीं था आपको कि अच्छे के लिए हो रहा है। तो जब कोई संकट आता है और हम बहुत उसके साथ जूझते हैं और रोते हैं, मतलब हम बालक हैं अभी बच्चे हैं, हमको अभी समझाने की ज़रूरत है कि भैया तुम बीमार हो, हमको सुई लगाई जा रही है, और जब हमको सुई लगाई जा रही है हम बोले ठीक है अच्छी बात है लगाओ, मतलब हम बड़े हो गए हैं अभी भक्ति के मार्ग में, बड़े हो गए हैं समझदारी में आ गए हैं। तो इसलिए जब भी कोई कृपा होती है ना तो वो हमेशा पहले कड़वी लगती है, अपने को अच्छी नहीं लगती, ऐसा क्यों मेरे जीवन में क्यों, लेकिन जब उसको हम बोलते हैं ना थैंक यू माय लॉर्ड, भगवान आपका धन्यवाद है जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मैं जानता हूँ मैं अभी समझ नहीं रहा हूँ कि कैसे मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मैं सुना हूँ कि जो भी आप करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो मुझे उसको झेलने की शक्ति दो, बस उसमें से मेरा कर्तव्य क्या है बता दो, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी सेवा क्या है उसके अंदर वो मुझे समझा दो, और कष्ट हुआ तो सहने की शक्ति दो, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जूझू नहीं उसके साथ में, संघर्ष नहीं करूं। आप जो भी कृपा भेज रहे हैं वो मैं सर आंखों पर रखकर स्वीकार करूं, ये बहुत जरूरी है। जब ब्रज में लोग आते हैं ना रहने के लिए, अरे आते ही टाइफॉइड दो बार तीन बार, उसके बाद मलेरिया, उसके बाद पैर में मोच आ गई, उसके बाद में बाप रे रीढ़ की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, रिक्शा ने ठोक दिया। हमेशा देखा मैंने, जो भी अभी आप लोग तो ब्रजवासी हो, भगवान ने आपको जन्म ही यहाँ पर दिया है, लेकिन जो बाहर से आते हैं ना यहाँ बसने के लिए, अरे पहला साल तो उनका बहुत भयंकर जाता है। जब यात्रा करने आते हैं तो मजा है सब, कार्तिक महीने के बहुत ठंडे मौसम में आते हैं, कथा सुनते हैं, सब लोग भक्तों के साथ नाचते हैं, आते हैं, मतलब क्या वृंदावन धाम में क्या आनंद है, तो जाने का ही दिल नहीं कर रहा है, मतलब यही रह जाए ऐसा लगता है, क्योंकि वो बेस्ट चीज़ आपको बेस्ट समय पर बेस्ट रूप में दी जा रही है। लेकिन एक बार आप बोलेंगे अभी आपको शिफ्ट होना है यहाँ पर, तो शिफ्ट होने को आएगा ना, तो कभी बंदर काटेगा, कभी कुत्ता काटेगा, कोई कुछ होगा, फिर मैंने देखा है ऐसी परीक्षा भगवान लेते हैं ब्रज में रहने के लिए, उसके बाद में आप सेटल हो जाते हो, फिर आपको इतना कष्ट नहीं होता। लेकिन ब्रज में आने वाले हर एक व्यक्ति को ऐसे ऐसे चीज़ें देखी हमने यहाँ पर, कि हमारा एक पेशेंट था, वो घर में अभी पंखा लगा के रखा है स्टैंड वाला, आगे का ढक्कन नहीं उसके ऊपर, पीछे का ढक्कन है, आगे पंखा है ऐसा खुला, तो वो जा रही है अपने से घर में चल रही है, तो कुछ पैर में अटकती है तो गिर जाती है ना, सीधे पंखे पे गिर जाती है, और सीधा पंखा जो पत्ता है ना उसकी आँख को आधा काट देता है। ऐसा मरीज हमारे पास एक बार आया था, तो सोच सकता है कभी कि तुम्हारी आँख आधी कटेगी तुम्हारे घर के पंखे से, कोई कल्पना कर सकता है, लेकिन हुआ है ऐसे। और वो हम डॉक्टर हमारे देखने गए थे उनको, ऐसे आधी आँख दो आँख हो गई कट के पंखे के इससे। फिर रस मंदिर में एक बार वो चंद्रप्रकाश जी राधे राधे, रस मंदिर में एक बार वो खीर बन रही थी बड़े भगोने में, एकदम बड़े भगोने में, हाँ तो चार साल के लड़के खेलते खेलते ना वो भगोने में गिर गई, 22 दिन बेहोश थी वो श्री जी। अभी कोई सोच सकते क्या कि खीर के भगोने में कोई बच्चा गिर सकता है? वो ऐसे ही टेबल पे खेलते खेलते इधर वो ऐसे ही वो उसको ऐसे ऐसे कर रहे थे, खीर को चला रहे थे वो, तो बच्ची गरम खोलते हुए खीर में गिर गई, बोलो उसको निकालता निकालते उसका बर्न हो गया उसको, वो दिल्ली में भर्ती रही वो 22 दिन तक, ठीक हो गई बाद में। इतना कष्ट है। बंदर भी देखो कभी एक लंगड़ा होता है, कुत्ता भी देखो टेढ़े पैर होते हैं उसके, क्या क्या, क्योंकि यहाँ पर का निवास जो है वो कष्ट आते हैं इसके अंदर, लेकिन वो आखिरी जन्म है उस जीव का, सारा हिसाब किताब पूरा कर देते भगवान उसका एक ही जन्म में, तो 50 जन्म लेके भी पूरा नहीं हो सकता है, वो एक ही जन्म में उसका फाइल क्लियर कर देते हैं, उसका दोबारा नहीं आना चाहिए। तो लोगों को लगता है वो कितना कष्ट है, तो दिल्ली का जीवन अच्छा है अपना, मुंबई का अच्छा, एयर कंडीशन में बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप एयर कंडीशन में बैठेंगे और 50 जन्म में दोबारा आके बैठेंगे एयर कंडीशन में सुख लेने के लिए, लेकिन जन्म मृत्यु का दुख तो भोगते रहेंगे वहाँ पर। तो तात्पर्य कहने का यह है कि ब्रज का जीवन जो है वो दूर से संघर्षमय लगता है, लेकिन अंदर से पूरी कृपा से भरा हुआ है। अंधा आदमी है लेकिन उसको अंदर से दृष्टांत होता है राधा रानी का, है ना, उधर मोरकुटी में जो अंधा भक्त था ना, अंधा मालूम है आपको, मोरकुटी पे एक ऋषि था मुनि, अंधा था वो, उसको राधा रानी ने दर्शन दिए स्वप्न में। तो अंधा आदमी तो बाहर से अंधा है, अंतःचक्षु उसके अंधे नहीं है। अंधे आदमी को सपना आ सकता है क्या, आप बताओ? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल, हमारी ये आंखें जो है ना, ये बाहरी आंखें हैं, इस आंखों से आप देखते हो, ये आपका यंत्र है आपका, ये जैसे चश्मा है, चश्मा भी आंखें है ना मेरी, आंखें जैसे ही है, लेकिन चश्मा से ये आंख देखती है, लेकिन ये आंख जो देखती है तो मेरा अंतर चक्षु देखता है, हृदय की आंख, आत्मा की आंख, आत्मा की आंखों से हमने राधा रानी ने दर्शन दिया उसको, अभी भी बाहर से अंधा ही है वो। तो राधा रानी ने अपना लीला दिखाया उसको पूरा, मोरकुटी वाला विराट ठाकुर जी नाच रहे हैं, और उसको बोला कि अभी तुमको चित्रपट निकालना है इसका, तो वो कहता है मैं तो अंधा हूँ, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कृपा से आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो अंधे ने आंख नहीं उसकी, चित्रपट बनाया है राधा रानी की कृपा से, वो आज भी वहां विराजमान है, मोर मोरनी बनकर ठाकुर जी नाच रहे हैं। कभी अंधा होना उसके लिए शाप था कि वरदान था, बताओ? आप जिंदगी भर चर्चा करते रहो, एक पक्ष बोलेगा शाप था, एक पक्ष बोलेगा वरदान था, चर्चा चलती रहेगी, लेकिन उस पर तो कृपा हो गई ना। हमको लगता है ऐसा कि कोई चीज़ इसके जीवन में ऐसे क्यों हो रही है, लेकिन ठाकुर जी की जो योजना है उस व्यक्ति के लिए, खास करके ब्रज में जो उनके प्रिय जीव यहाँ पर रहते हैं, बाहर से आए हुए भी रहते हैं और जन्म लिए भी रहते हैं यहाँ पर, लेकिन ठाकुर जी की योजना जो है उसको हमको सराखों पर मानना चाहिए। अभी हम लोग बोले अरे भारत में क्या रखा है, विदेश जाओ, रास्ते इतने अच्छे हैं और चीज़ें इतनी अच्छी मिलती हैं, ज़िंदगी कितनी अच्छी क्वालिटी की होती है। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, क्या प्रभु जी इधर ब्रज में क्या रखा है, वो बम्बई ले चलो, है ना। गांव के लोग बोलते हैं प्रभु जी क्या गांव में है, वो वृंदावन ले चलो, मथुरा ले चलो, मथुरा में कुछ करो, हमारा घर वर का इंतजाम, वो दुकान खुलवा दो मथुरा में। बम्बई का आदि बोलते हैं बम्बई में क्या है, न्यूयॉर्क चले जाओ, अमेरिका चले जाओ। बाकी लोग बोलते हैं इधर क्या रखा है, स्वर्ग में जाओ, यज्ञ करो, अगले जन्म में स्वर्ग में जाओ, देवता बनो, अप्सराओं के साथ आनंद लो। ऐसा ही है सब कुछ, अज्ञानी लोग ये सोचते हैं ऐसा, लेकिन बुद्धवासी लोगों को सोचना चाहिए, अरे हमारा चप्पा चप्पा यहाँ पर धाम है, कहीं भी गलती से भी नजर पड़ी वो भी धाम है, हर जगह राधा रानी और कृष्ण का लीला स्थली है। यहाँ पर रावल बन में ठाकुर जी लीला रचाते हैं, रास करते हैं, उसके आगे पाड़र बने हैं, उधर भी बहुत सारी लीला है, बाजू में ही उसके, अभी तो पूरा खेती खेत है, लेकिन एक लावर बने, एक पाड़र बने, पीछे ब्रजेश्वर महादेव। इसलिए हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हम कितने भाग्यवान हैं, और ये भी भूलना नहीं चाहिए कि हम किस जगह पर डोल रहे हैं, किस जगह पर सांस ले रहे हैं, किस जगह का पानी पी रहे हैं, किस जगह पर भोजन कर रहे हैं, ये सब ब्रज में है। हम लोग ब्रज है ना, एक ब्लैंकेट की तरह है, पता है, जैसे ब्लैंकेट आपको सब जगह घिर लेता है ना रात को, वैसे ब्रज आपको सब जगह से घिरा हुआ है। यहाँ पर, यहाँ पर केवल कृष्ण की हुकूमत चल सकती है आपके ऊपर, आप चाहे तो माया की हुकूमत अपने आप पर लाद सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे माया का प्रभाव नहीं चाहिए, तो आपके ऊपर केवल कृष्ण की हुकूमत चलेगी। यहाँ पर जो भी अच्छा बुरा आपको लगता है वो कृष्ण की इच्छा से होगा आपके जीवन में, इतना आवरण है यहाँ पर कृपा का। लेकिन वो भूल जाते हैं हम लोग और कंप्लेंट करते हैं हम लोग, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, मैंने क्या बुरा किया था, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, उसके जीवन में ऐसा क्यों नहीं, वो तो मुझसे अधिक पापी है, मैं उससे अच्छा हूँ। ये हमारे इंद्रिय बोलते हैं, हम नहीं बोलते, हमारे जो इंद्रियाँ हैं ना वो दूषित इंद्रियाँ वो बोलते रहते। और हर वक्त यहाँ रहते हुए आपको राधा रानी और कृष्ण की जो कृपा हम पर हावी है उसका ध्यान होना चाहिए, उसका अवधान होना, अवधान मतलब नॉलेज होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, अलर्ट होना चाहिए आपको कि मैं इस तरह से हूँ, जैसे मैं खैरे से हूँ, छाता में रहता हूँ, मैं बरसाने से हूँ, वृंदावन में हूँ। एक एक पल जो यहाँ का है ना, अगर आपकी चेतना सही होगी तो यहाँ का एक पल भी आपको गोलोक धाम का वीज़ा निकाल के दे सकता है। चेतना सही होनी चाहिए, यहाँ पर रहकर कोई अगर पाप करेगा तो वहाँ का जो धाम है वो अपनी लीला को अपने आप से दूर कर देगा, जैसे ब्लैंकेट हटाया जाएगा आपसे। और जिस क्षेत्र में साधुओं ने भजन किया है ब्रज में, वो क्षेत्र जो अपनी लीला को पूरी तरह से गौरव प्रकाशित करता है वो धाम जो है, जैसे बरसाना में मानगढ़ पे बाबा रहे हैं तो मानगढ़ की लीला पूर्ण प्रकाशित है सबके लिए, धाम पहुंचते ही आपको आवृत्त कर लेता है अपनी कृपा से। और कहीं डकैत रहते हैं, कहीं मारपीट होती है, कहीं खून खराबा होता है, कहीं रेप होता है ब्रज में ही, तो आपको लगता नहीं कि पवित्र चीज़ है, आपको लगा तो ये तो भयंकर चीज़ है, यहाँ मत जाओ भाई, बोलेंगे आप यहाँ पर औरत लोग आदमी लोग बहुत असुरक्षित हैं, कभी खून होगा, कभी लूटे जाएंगे आप, कभी कुछ होगा पता नहीं, बंदूक बनती है यहाँ पर, ऐसा लगेगा। तो वही पवित्र है, वही ब्रज का चप्पा चप्पा लीला स्थली है, लेकिन वो लीला स्थली अपने गौरव को दबा देता है, और जहाँ साधु लोग रहते हैं भजन करते हैं वो लीला स्थली अपने आप को प्रकाशित करती है। वैसे ही आप अगर कहीं से भी हो, अगर आपकी चेतना सही है, प्रामाणिक है, सरल हृदय है, आप भजन करते हैं भगवान के नाम का, तो जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर आपका निवास जो है वो सही चेतना जो है वो आपको गोलोक तक तो पहुँचा सकती है। मुंबई में ऐसा नहीं होता है, दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात का। चाहे जितना भजन करो, बहुत मुश्किल है भजन करना, अरे माया का इतना प्रभाव है वहाँ पर, बहुत जूझना पड़ता है सोलह माला को पूरा करने के लिए, और यहाँ पर वही सहजता से होता है, आनंद से होता है, प्रेम से होता है और बड़ा हृदय में। लेकिन अनुभूति आपको होनी चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस जगह बैठी हूँ, किस जगह बैठा हूँ, कहाँ पर काम कर रहा हूँ, क्या क्षेत्र में मैं निवास कर रहा हूँ। यहाँ का हर चीज़ रस है राधा रानी की कृपा से। इसलिए बाकी जो भोग हमको मिल रहे हैं वो कर्मों के हिसाब से मिल रहे हैं, किसी को कुछने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों वैसा क्यों, जो यहाँ पर भाग्य लेके आए वो आप भोग रहे हो, उसमें कोई तबादला नहीं कर सकता है, कोई जादू नहीं कर सकता उसके अंदर। समय से पहले भी नहीं आएगा और ज़्यादा भी नहीं आएगा, कम भी नहीं आएगा, जैसा आएगा वैसा ही आएगा, जब आना है तभी आएगा। बदल क्या सकते हैं आप, बदल अपनी चेतना को बदल सकते हैं आप, अपने भाव को बदल सकते हैं आप। एक चोर के भाव से आप काम कर रहे हो या आप एक संत के भाव से काम कर रहे हो, ये आपके हाथ में है। बाकी बाहर का चीज़ बदलने वाला नहीं है, आपके भाव को आपको बदलना, आपके भाव बदल, जैसे भाव बदला सब कुछ आपके लिए चेंज है। वही कष्ट जो है वो कृपा बन जाती है, वही पीड़ा जो है वो भगवान का आशीर्वाद बन जाता है। हम सब लोगों को ये चेतना जो है ना वो चेंज करना चाहिए, भाव जो है चेंज करना चाहिए, अपनी नौकरी को सेवा में रूपांतरित करना चाहिए, अपनी सेवा को नौकरी में बदलना नहीं चाहिए, है ना। जो सेवा प्राप्त हुई राधा रानी के धाम में वो हम लोग नौकरी के भाव से कर रहे हैं, गणित कर रहे हैं उसका बैठ के, आलस्य कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आकर जो हमको नौकरी मिली है उसको अगर हम सेवा में रूपांतरित करेंगे, ये जान करके मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ और कृष्ण के लिए करना चाहता हूँ, यही पूरा गीता का सार है। अर्जुन जब आया रथ लेकर तो युद्ध ही करने वाला था, बाद में बोला नहीं करूँगा, फिर कृष्ण ने कुछ सुनाया उसको, फिर उठा और वही किया उसने, कुछ दूसरा किया क्या, वो ऐसा वायलिन लेके बैठा गीत गाने के लिए और दुर्योधन के सामने, ऐसा कुछ किया क्या उसने, नहीं नहीं भगवान की गीता सुनी ना उसने, तो भाव बदले हो गया उसका, भी वायलिन लेके बजा रहा है वो, फ्लूट बजा रहा है, मुरली बजा रहा है, ऐसा किया गया नहीं। पहले भी धनुष मारने वाला था, बाद में भी धनुष ही मारा उसने, तो बताओ अंतर क्या हुआ इसमें, उसमें बीच में जो कथा हुई उसका परिणाम क्या हुआ। पहले वो खुद के स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ने जा रहा था, जो बीच का कथा सुनी उसने, उसके बाद में वो कृष्ण के लिए लड़ा, वही धनुष वही बाण वही गांडीव, लेकिन भाव बदल गया उसका। क्या कहते भगवान, माम अनुस्मर युद्ध च, मन मना भाव मद भक्ति मद याजी माम नमस्कुरु। क्या बोल रहे भगवान, मुझे याद करके युद्ध कर, मेरे लिए युद्ध कर, खुद के स्वार्थ के ऊपर उठा और मेरे लिए युद्ध कर। और जब उसने भगवान के लिए युद्ध किया ना, उसके भी सारे जितने उद्देश्य थे खुद वाले वो भी सिद्ध हो गए, बदला भी पूरा हो गया, अन्याय का भी हिसाब किताब पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया उसमें। तो भगवान के लिए जब कार्य करते हैं तो अपने भी स्वार्थ उसमें पूरे हो जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए अलग काम नहीं करना पड़ता है। भगवान क्या नौकरी करेंगे तो क्या आपके लिए अपने लिए खुद अलग नौकरी करनी पड़ेगी, भगवान सब कुछ संभालने वाले हैं। तो जब अर्जुन ने तय किया कि मैं हाँ करिष्ये वचनम तब नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, करिष्ये वचनम तब, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, मेरा मोह नष्ट हो गया, अभी आप जो बोलेंगे वैसे करूँगा, आपके लिए युद्ध लड़ूंगा। तो उनके लिए युद्ध लड़ा तो उनके सारे बदले पूरे हो गए, सारा अन्याय भी नष्ट हो गया उनका। तो क्या हुआ बीच वाली कथा में, क्या हुआ, भाव बदल गया उसका खाली। वो किस लिए युद्ध कर रहा था वो चेंज हो गए, अभी किस लिए युद्ध कर रहा है वो चेंज हो गया उसका। हम भी यहाँ पर कई उद्देश्य आए हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन अभी हमको समझना चाहिए कि जो भी कर रहे हैं हम, ठाकुर जी आपके लिए करना चाहते हैं, चाहे वो हमारी यहाँ के नर्स की नौकरी हो, डॉक्टर की नौकरी हो, ड्राइवर की नौकरी हो, फलाने की नौकरी हो, लेकिन अभी हम आए थे नौकरी करने के लिए, अभी हम समझ रहे हैं कि उनके लिए करना है उसको, मतलब प्रामाणिकता से करना है, हृदय से करना है, सच्चे दिल से करना है, सरल हृदय से करना है। ठाकुर जी मतलब आप आपकी नौकरी को भक्ति बना रहे हो, तो जब भक्ति बनेगी तो भक्ति का फल मिलेगा, नौकरी को तो नौकरी का फल मिलेगा, सिंपल। लेकिन जब भक्ति करोगे तो भक्ति का फल मिलेगा और नौकरी का फल भी मिलेगा उसके अंदर, ऐसा नहीं कि पगार बंद हो जाएगा आपका। चलो अभी सचिन बोलेंगे कि कल से मैं मेरा ऑप्टोमेट्री काम भगवान के लिए करूँगा, तो कल से उसका पगार नहीं बंद होगा, पगार भी चलता रहेगा और भक्ति का भी लाभ मिलेगा। वैसे ही गीता में हुआ, बाण चलाया भगवान के लिए लेकिन स्वार्थ भी उसमें पूर्ण हो गया। यही हमको समझना है, बाकी कुछ भगवद्गीता कोई ऐसी बड़ी जटिल चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है। भाव भगवान को उसका चेंज करना था और भगवान ने उसका स्विच बदली कर दिया तो सही लाइन पे आ गया वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।